ये क्या है कि भाई हमें तो अपना उद्धार करना ही है, चॉइस हो गया, उससे भी कमी है। ये अगर विचार कर कह लिया जाए तो अभी अभी अनुभव करना ही है। ये जोरदार जितनी इच्छा होगी उतनी ही हर्ष हो जाएगी। फिर वो बातें बस अनुष्ठान हो जाए।
सत्संग
में
तो
सत्संग में ऐसी रहे ना उसको स्थायी करे। दो चीज है सत्संग में, पारमार्थिक बात सुने उस समय मनुष्य होता है, और एक भोग भोगने के बाद में अरुचि होती है। तो इन दोनों को स्थायी कर ले, संसार की अरुचि कर ले स्थायी और सत्संग की रुचि को कर ले स्थायी, इन दोनों को पक्की कर लो। ये करना आपका काम है। अभी सत्संग में रुचि हो तो सत्संग उठते एकांत बैठ कर इसी बात के ऊपर जोर लगाए, उस यही काम करना है, इस देश ही करना है, इस देश ही करना है। ऐसे अगर पका ले जाए तो ये हो जाए, और ये फिर हो जाए काम बन जाए। कभी काम सुगम बहुत है, केवल रुचि होने से हो जाए काम। रुचि को स्थिर कर लो, जब सत्संग में हो जाए तो वह चीज कर लो। जितनी बात की जल्दी नहीं हो गई, ये बहुत तेज हो गए, ये समय लगता है, ये बहुत घातक भी है। भविष्य की आशा है, परमात्मा तत्व की जो भविष्य की आशा है, ये बहुत ही घातक भी है। भविष्य की आशा होती है जो कर्म निर्मित होती है, जिससे देश काल की दूरी होती है, उसी वस्तु के लिए भविष्य की आशा होती है। सब देश में, सब काल में, सब बच्चे में
जय बजरंग बली की, अरुण कुमार की जय, जय हो श्रीम जिले की नाथ की जय, भगवान थैंक यू जय गोल।
संसारी कामों के लिए जैसे भविष्य की आशा है, ऐसे ये भीतर में बची हुई है कि जल्दी जैसे इसमें समय लगेगा, भविष्य में होगा, बहुत समय लगेगा तब होगा, ये धारणा बहुत गलती है। उसको कैसे दूर करें पता नहीं है। हमारी ये बात सुनने में आई थी कई वर्षों पहले की बात है, अभी किसी जी ने कहा था ये भविष्य की आशा है बड़ी खराब है, वो दिशा बन जाएंगे जैसे बिल्कुल आप जी की अपने मेरे है ही आती। ये जो बातें होती है ना, मैं आपको सुनाता हूँ तो मेरे को अच्छी लगी है वो बात आपको सुनाता हूँ। मेरे जीवन में भी जो भी ठीक लगी जो बात अच्छी है वो बात आपको सुनाऊंगा। उन बातों को आप उतना आदर करो, महत्व दो तो जरूर बोलो। बहुत जल्दी अपनी स्थिति हो सकती है, कारण कि परमात्मा मौजूद है ना। जैसे राजा का राज्य की संपूर्ण वस्तुओं पर, सब गांवों पर उनका शासन रहता है, सबके साथ संबंध है, उससे बहुत विशेष करके परमात्मा तत्व का संबंध है। बहुत विशेष ये इन पदार्थों की सत्ता ही, उस परमात्मा सत्ता से ही दिख रही है, नहीं तो एक क्षण भी नहीं फैलने वाला संसार सत्ता क्यों दिखता है। जिसमें सत्य है उसी की आभा उसमें दिख रही है, तो उसका संबंध तो नित्य निरंतर है ही, किसी क्षण भी उसका दिए संभव नहीं है। ऐसा नित्य योग उसे हरदम बना हुआ, नित्य योग है। दुख संयोग है वियोगम योग संयोगम, दुखों के संयोग का वियोग का नहीं योग है, तब तो क्या है जो क्षण बंगुर है उसका वियोग किया उसका योग है, उसका वियोग हरदम हो रहा है। तो ब्रजम हो रहा है, ये वियोग है, अभी वियोग है, अभी मृत्यु की मान लो मृत्यु होगी, ऐसे अमर गया तो अभी मरे उसका 100 वर्षों के बाद मरो, मरते सही गए इस बार से संयोग रहते वियोग का दृढ़ता से अनुभव कर रहे हैं, तो योग से जुड़ा संविद्या दुख को संयोग है वियोग और योग संयोग योग अनुभव कर लिया। तो तुमका वियोग हो रहा है, प्रत्येक क्षण हो रहा है वियोग। जहाँ ये वियोग की बात अनुभव में आई तो वियोग हो, वो होती है संसार के भोगों से अरुचि। उस अरुचि को आदमी स्थायी नहीं करता, साधक होता है उसको स्थायी करता है, संसारी होता है वो अरुचि को स्थायी नहीं करके भोग में जो सुख मिलता उस रुचि को स्थायी करता है। ये गलती होती है।
योग तो वियोग होते ही योग तो आप कहते हैं, जैसे कि हमें ये तो मालूम हो गया किसी तरह से कि ये रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ, हमने उसको छेड़ा, डंडा मारा, उसने हरकत नहीं की, तो ये हमें हो गया कि ये सर्प नहीं है। लेकिन ये क्या है ये तो जब तक प्रकाश नहीं होता है तब तक उसका ज्ञान नहीं होता है कि डंडा है, भूषित है, क्या है क्या है। इसीलिए संसार का ये योग जानने के बाद उसकी निष्पक्षता का ज्ञान हो गया, लेकिन सत्य क्या है इसका किस तरह से हम इस निर्णय करने की यही सत्य है।
देखो भाई, मेरे विचार में तो सत्य की अभिलाषा कम है, वो कमी होने से लगन नहीं है। सत्य की बात इतनी सरल, इतनी बढ़िया है और इतनी प्रत्यक्ष, आप क्या बताएं। अब ध्यान दो, सत्य क्या है? जिससे आपको असत्य का ज्ञान होता है ना, यही सत्य है। असत्य का ज्ञान असत्य का नहीं होता। ये जो आपको ज्ञान है कि संसार नहीं, जो ये संसार इतनी नहीं है, ये जो असत्य का ज्ञान है, ये असत्य ज्ञान सत्य से ही होता है। यही सत्य है। कितना मेरी सत्य बताओ, ये सत्य है और ये होना पाना है। बहुतों को ये प्रश्न रहता है कि संसार तो नश्वर है पर तो परमात्मा ने तो क्या बता, ये कहे जाने। अरे नश्वरता बिना अविनाशी के दिखती ही नहीं, बिना सत्य के असत्य का भान ही नहीं होता। असत्य असत्य तभी दिखता है कि जिस समय आप सत्य में सिद्ध होते हैं। तो सत्य में तो स्थिति आपकी सदा सिद्ध है, जिससे असत्य का भान हो तो वो सत्य है। बिल्कुल इन्हें शंका करो तो यह तो बिल्कुल ठीक है। यही इस पर बैठ जाओ कि यही है, ऐसा होता है ना, जब सत्य क्या होता है, क्या प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान होने क्या होता है, जीवन मुक्ति क्या होता है, भगवत भूत क्या होता है, यहाँ सिंह हो जाते हैं, कोई पूछ हो जाता है, क्या कोई परा आ जाती है, कोई पंख पंख आ जाती है, क्या हो जाता है, कोई कल्पना नहीं, क्या क्या कल्पना कर रही थी। आप कृपानाथ इतनी कृपा करो, चलो इतनी बात है कि असत्य का जिससे बोध होता ही। अब आंख क्या है? अरे जिससे दिखता है वो आंख है। अब ये आंख ऐसे कैसे देगा, यह चीज तो ये चीज ऐसे कह दो, बन आंख को यह कह दिया आंख बताओ क्या बताओ, क्योंकि सब दिखता है परंतु आंख क्या है, आंख नहीं दिखती। अरे जिसने देखते वो आंख है, बोलो आंख ऐसे कर दे आंख कह दिया। देखने की शक्ति वो नहीं दिखती है, आपकी आंख दिखती है तो आंख में शक्ति देखने की वो नहीं दिखती है, वो शक्ति जिसमें है तो वो उसका स्थान दिखता है, आंख दिखती नहीं। अब आंख को इतनी बात देखना चाहिए, ये आंख में बताओ किसी कैसे बताओ, सब दिखता है जिससे वो आंख है। जितना ये ज्ञान होता है आपको सुनने से, पढ़ने से, विचार करने से, जो अब वो ज्ञान होता है, ये ज्ञान जिसमें होता है वही सत्य है, जो सबका प्रकाशक है, सबका आधार है, उसके आश्रय संसार है, आश्रित है ये, वही आश्रय वही प्रकाशक है, वही इसको ज्ञान करा रहा है, वो ज्ञान करा रहा है, यही सत्य है, यही नित्य है, यही ज्ञान स्वरूप है, यही चेतन स्वरूप है, जो ज्ञान का चेतन स्वरूप है, उसमें दुख का अंदेश में जो आनंद स्वरूप है, वो ऐसा संसार के जैसा सुख नहीं, यही आनंद है, फिर एक अखंड आनंद है। कितनी प्रत्यक्ष बात है बताओ। लेकिन देखो ध्यान दो, आपको जितना ज्ञान होता है, जिस से ज्ञान होता है तो वही वास्तव में सत है, और जितना आधार है जो वो वही सत है। सबका आधार है, सबका प्रकाशक है और सबको प्रकाशित करता है, वही सत है। उसमें शंका और बोलो। हाँ तो वो तो है ही, सही संसार की बात हो रहा है भैया, एक क्षण भी सिद्ध नहीं जाता। सफाई की ये नहीं है, यूँ मानना है कि ये जो विचार है ये क्या माने, जैसे दर्पण में मुख दिखता है परंतु भीतर से दूर रहता है, जैसे मुख नहीं है दर्पण में दिखता है, ऐसे ये संसार दिखता है बिल्कुल स्थिर नहीं रहता है। और स्थिर नहीं रहना अपने अनुभव की बात है, संसार भी कितना बदल गया। अभी यहाँ देखो जंगल कार मकान बन गया, तो अपन देखी हुई बात है ना, सारा जंगल बिल्कुल मकान बन गया, बिजली आ गई बिल्कुल। तो ये संसार से बदलता है मिटता, ये कौन सा रहेगा, एक दिन सफा कट जाएगा कुछ नहीं जाएगा, कोई तो मिट रहा है प्रदूषण में। अब मिट रहा है उसको मिटता मिटा हुआ ही मान लो, और बात लगी है तो, और ये दिख रही हूँ जाजू सत्यता पे जड़ माया, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया भाज सत्य मोह सहारा मूड का कहने सत्य की तरह दिखता है। जासु सत्यता पे जड़ माया भाष सत्य मोह सहारा, कितनी कितनी सुंदर बात कही छोटे से मिला। तो इस जिससे ये सत्य दिखता यही है, जैसे मूलिया बनाया जाए नुकती बिल्कुल चिना के आते, और चिना बिल्कुल ठीक है, ये गोंदिया भी चीनी में डालने से मीठा हो जाए तो चीनी मीठी है कि नहीं है इसमें संदेह है। फीका आटा चीनों का भी मीठा लगे तो आटा थोड़ा मीठा हुआ, आटा वो कर वैसे यमुना में थोड़ी देर चूस दे जाओ उसमें वो बूंदिया वो अब फीका हो जाएगा, यहाँ चूस करके रस निकला है तो जब ठीक है ठीक है
कोई
है
कि नहीं।
हाँ बोलो, अब ये समझो ऐसे ठीकों को भी मीठा दिखा दे वो मीठी कैसे नहीं है, ऐसे मच्छर को भी है दिखा दे अब वो है कैसे नहीं है। अंधेरे को प्रकाश भी कर दे कि अंधेरा है, और प्रकाश को भी प्रकाश भी कर दे अंधेरा प्रकाश, दोनों को प्रकाश करने वाला दोनों का ज्ञान कराने वाला वो अज्ञान कैसे है। अंधेरा और प्रकाश दोनों का ज्ञान होता है कि नहीं होता, तो वो तो अलुप्त प्रकाश है, उसके लुप्त होता ही नहीं वो प्रकाश। ऐसे आपकी क्रियाओं को अक्रियाओं को जागृत सभी सुसुप्ति को इन अवस्थाओं को सबको प्रकाशित करता, सब अवस्था से जब यही है सब निर्धार क्रिया अवस्था क्रिया अवस्था सब जानी जाती है, कितनी प्रत्यक्ष बात है।
महाराज ये बात तो समझ में आ गई कि जिसके द्वारा सब वस्तु जानी जाती है वो
सच है, मोह कहाँ से रहेगा, मोह तुम पकड़े तुम पकड़ा है कहाँ से रह गया, यही रह गया वो नहीं रह गया, नहीं रह गया। सच्ची बात है भैया, मेरी बात मान लो, ये मोह रहा नहीं है तुम्हारे में, नहीं है मोह, तुमने मान लिया कि मोह है, जब तक राग द्वेष होता तो मोह हो गया, ये हो तो मोह हो गया, होने को राग द्वेष अंत अंतगण होता, तुम अपने उसी प्रकाश में चल रहो, होने दो खूब होने दो, तुम प्रकाश नीचे मत रोको, वो प्रकाश मेरा शुरू हो गया, तुम करके नहीं देखो तो क्या पता है क्या मन देती, मानते ही नहीं जाना।
यह प्रवचन परम सज्जन स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 29 अगस्त 1984 को प्रातः 5 बजे भीमासर के मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। राम राम राम
हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम
हरे शरणम
हरे शरणम हरे शरणम
हरे
जो अपना अवगुण अपने को दिखने लगा, ये दिखने लगता है जितना स्पष्ट दिखेगा जितना साफ दिखेगा उतना ही उस अवगुण के साथ संबंध विच्छेद होगा। एक तो अवगुण दिखता है सभ्यता के लिए कहता है और लोगों में आदर हो जाए कि कितना स्पष्टवादी हूँ कितना सरल हूँ ऐसा लोग समझ ले। अगर ये गंदगी रहेगी तो भी नहीं होगा, क्योंकि उसके बदले में एक मान बड़ाई खरीद ली। परंतु साथ ऐसा ही होने लगे कि मेरा स्वभाव ऐसा है और उसके वो स्वभाव के अनुसार ऐसा होने पर दुख पैदा हो भीतर में, क्या करूं मैं साधु कहलाता हूँ दशा क्या है मेरी, ऐसा दुख पैदा हो जाए और उस दुख से फिर ये स्पष्ट दिखने लग जाए, साफ साफ दोष दिखने लग जाए। जितना ही दोष साफ दिखेगा उतना ही आपसे उस दोष का संबंध विच्छेद हो गया। एक भारी तत्व है ये। साधक दोष देखता है तो उसे घबराता है, क्या करूं इतने मेरे में दोष है। परंतु घबराता है वो तो अच्छा है, दोष से ग्लानि हो जाए उतना अच्छा है, परंतु ये दोष मेरे में है ऐसा न माने। ध्यान देना ही साधक के लिए बहुत बढ़िया बात है कि दोष मेरे में है ऐसा न माने, तो कि मेरे से दोष दूर जा रहा है। जैसे आंख में अंजन लगाया हुआ अंजन आंख को नहीं दिखता, दूसरी चीजें सब दिखती है परंतु अंजन नहीं दिखता, ऐसे जब तक अवगुण अपने में रहता है तब तक अवगुण साफ नहीं दिखता, भगत पर दिखता नहीं अवगुण। और अवगुण दिखने लगे तो समझना चाहिए कि अब कुछ मेरे से दूर हुआ है। दूर अगर न होता तो ये दिखता कैसे, जितना स्पष्ट दिखे साफ दिखे उतना ही अवगुण अपने से दूर हो रहा है, दूर जा रहा है। अत्यंत दूर भी वस्तु आंख से नहीं दिखती, अत्यंत नजीक भी नहीं दिखती, ठीक थोड़ी सी दूर होती तब दिखती है। ऐसे अवगुण दुख दिखते हैं तो अपने से थोड़े दूर गए हैं तो उसमें एक प्रसन्नता आनी चाहिए कि अब दोष मेरे में नहीं है और ये दोष मेरे में था वो निकल गया है और निकल रहा है और ये मिट रहा है, ऐसा माने। भूल इस समय में होती है वो साधक अपने में मान लेता है और अपने एक मैं सरल हूँ, मैं एक ठीक देखने वाला हूँ, कपट नहीं रखता हूँ आदि आदि ऐसे अभिमान को पकड़ लेता है और देश दोष मेरे में है ऐसे मान लेता है। तो ये गलती होती दोनों, अपने में दोष को मान लेना बहुत बड़ी गलती है। अपने में मान लेने के बाद दोष को सत्ता मिलती है, दोष की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आपकी स्वतंत्र सत्ता है। और अपने में दोष मानने से आपकी स्वतंत्र सत्ता है, वो सत्ता दोष को मिलती रहती है, वो दोष जीता ही रहता है, वो मरता नहीं। तो आपकी सत्ता मिल गई, आपका बल मिल गया, इस वजह से वो निकलता नहीं, तो अपने में है नहीं। तो एक तो ये पहचान हुई कि वो दिखने लग गया, दूसरी ये पहचान हो कि अपने में अगर दोष हो तो सब समय में दिखना चाहिए। जब तक मैं हूँ ये ज्ञान रहता है उसके साथ साथ ही ये दोष मेरे में है हरदम, ऐसा रहता है क्या? हरदम दोष नहीं रहता, तो दोष आगंतुक होता है तो मेरे में दोष कैसे है? ये बहुत बड़ी गलती है। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से, अपने में दोष को मानना बहुत बड़ी गलती है। इतनी बड़ी गलती है कि दोष को निमंत्रण दे करके बुलाते हैं कि हमारे से यहाँ से कहीं चला न जाए, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, तुम्हारा तो ये खास घर है, इसलिए से उसको निमंत्रण दे करके आग्रह करके आप रख रहे हैं। इस वास्ते हमारे में दोष नहीं है, और दोष दिखता है तो अब जा रहा है, दोष मिट रहा है। और मूल में मेरे में दोष नहीं है, क्यों कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी नित्य रहने वाला है, और चेतन है, ये ज्ञान स्वरूप है। अमल, अमल कहना मल इसमें नहीं है, मूल में मल नहीं है, ये सच्ची बात है। और सहज सुख राशि है, ये जो दूसरे से सुख चाहता संयोग से ये गलती करता है। सहज सुख राशि स्वाभाविक ही जब दूसरे की तरफ से वृत्ति है तो अपने में स्थिति होगी तब सहज सुख मिलेगा। सहज ना सुख काजी पंडिता ना सुख ध्रुव भया, सुख सहजा ही आवश्य कृष्णा रोग गया। ये जो दूसरे से सुख की इच्छा है लोलुपता है, ये मिटने से सहज स्वरूप प्रकट होगा। फिर सहज सुख, और सहज सुख से मन स्थिर होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि निज सुख बिन मन हुई कि थीरा, निज सुख मन, निज जब तक सुख नहीं मिला तब मन स्थिर हो सकता है क्या? मन नहीं हो सकता, कठिनता है। और निज सुख मिलने के बाद मन कहीं जाएगा ही नहीं, तो निजी सुख मिल जाएगा तो निगुण जाएगा, पास नहीं मिल जाएगा सुख तो फिर वो मन जाएगा नहीं। तो निज सुख के मिलने से मन स्थिर हो जाएगा, इंद्रियों प्रश्न हो जाए, ये साफ आप साफ हो जाएगी। इसके लिए ये समझना कि अपने में ये दोष नहीं है, ये बात ख्याल करना खूब। और ये दोष पुष्ट होते हैं एक तो अपने में दोष मानने से, एक दूसरे का दोष देखने से, और दूसरे के दुख की तरफ परवाह न करने से। ध्यान देना, दूसरे के दुख की परवाह न करने से अपने में दोष स्थित होता है, कायम होता है। दूसरे को कैसे मेरे द्वारा सुख हो, उससे पहले कि मेरे द्वारा कहीं दुख तो नहीं हो रहा है, एक एक वृत्ति का ख्याल रखे हरदम सावधान कि मैं बोलता हूँ इससे किसी दुख तो नहीं होता है, मैं चल रहा हूँ इसमें किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, मैं बैठा हूँ यहाँ बैठता हूँ इससे किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, मैं कोई क्रिया करता हूँ दूसरे को दुख तो नहीं हो रहा है। ये तो गीता में कहा कि सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती, इसमें भी सर्वभूत हिते रता बताया। अर्थे प्राप्त मंत्री मामेव, मेरे को प्राप्त होते वहां भी सर्वभूत हिते रता बताया। तो निर्गुण की तत्व की चाहे प्राप्ति चाहता है, चाहे वो सगुण तत्व की प्राप्ति चाहता है, परंतु दूसरे का दुख न हो इस वृत्ति की बड़ी भारी आवश्यकता है। दूसरे की चीज दे देता है, दूसरे को दुख दे देता है, कष्ट दे देता है, तो उसमें वो जल्दी स्थिति नहीं होती, मन से स्थिति होने पर भी दृढ़ता से नहीं होगी। और ये अगर ख्याल रखा जाए कि मेरे द्वारा दुख न हो, किसी के भी मन के विरुद्ध नहीं करना है, और सिद्धांत के विरुद्ध तो करना ही नहीं है। संत महात्माओं को सिद्धांत है, गीता का सिद्धांत है, भगवान का सिद्धांत है, उसके विरुद्ध तो बिल्कुल कभी कहना ही नहीं है, चाहे नार कट जाए, गला कट जाए, मर जाऊं तो नहीं करना है, नहीं तो उसका बड़ा अपराध होता है, महान अपराध होता है। एक जो हमें पत्र में देखा था उसमें लिखा है कि जैसे अपने में दोष है तो बड़ा सुंदर रूप है, ये परमार्थ पत्रावली पहले भाग में है वो पत्र, और वो पत्र लिखा है सेठ जी ने भाई जी को, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को, बहुत पुराना पत्र है। उसमें लिखा है कि जैसे सोनार की गुटाली होती है, एक मिट्टी की बनाई हुई एक कटोरी होती छोटी सी, तो उसमें सोना डाल करके सोने को तपाते हैं तो सोने में कूड़ा करकट होता है, मैल होता है, वो तो बहुत जल्दी जल जाता है, परंतु उसमें विजातीय धातु होती है वो जल्दी नहीं जलती। तो ये जो अपने अंतःकरण में कूड़ा करकट है वो तो जल जाता है, परंतु विजातीय धातु जो है दूसरे को दुख देना, दूसरे की चीज लेना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे के अवगुण की तरफ देखना, उनका अपराध कर देना, शास्त्र का संतों का अपराध मन के विरुद्ध चलना, ये उसमें एक विजातीय धातु बढ़ जाएगी तो इसका जलना कठिन हो जाएगा। परंतु वो आप जलाते जाओ, ये साधन रूपी आग है, सत्संग रूपी फूंक है, ये लगती रहेगी हरदम, तो वो जलता रहेगा, वो जलता जलता साफ जल जाएगा तो सच हो जाएगा। सोना तो सच है ही, तो स्वरूप तो आपका शुद्ध है ही, उसमें ये मिला लेते हो अपने मतों से, ये मिला हुआ है तो इससे मृत्यु चला जाएगा। तो सबके हित की भावना हो, किसी का भी अहित न हो, अहित होता है ये बहुत बड़ा भारी नुकसान करता है। और हित करते करते गीता ने परम योगी माना है किसको, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिन सुखम बाहरी व दुखम सहयोगी परमो मत। जैसे अपनी चीज कोई ले जाए तो बुरा लगता है, अपने में कोई दोष देखता है तो बुरा लगता है, अपनी कोई निंदा करे तो बुरा लगता है, अपना कोई तिरस्कार करे तो बुरा लगता है, हमारे मन के विरुद्ध करे तो ये बुरा लगता है। ऐसे अपने सोचे स्वयं आत्मोपमेन, अपने शरीर की उपमा लेकर देख है कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव तो कैसा लगता है, तो जहाँ ये मालूम होगा ऐसा बर्ताव मेरे को बुरा लगता है, ये बर्ताव आप किसी तरह भी नहीं करेंगे। ये जो हमारे को बुरा लगता है बर्ताव, इसका अर्थ क्या है, भोगी आदमी तो इसका अर्थ करता है कि अपने सुख लगे जैसा करना है, बुरा लगे जैसा नहीं करना है, और ये बुरा बर्ताव करता है तो इसका नाश करना है, इसको हटा देना है, इससे बच जाना है, ये विचार करता है, वो भोगी होता है। और जो साधक होता है उसकी सावचेती होती है कि ये जो मेरे साथ बर्ताव करते बुरा लगता है, इसका अर्थ है ऐसा बर्ताव किसी के साथ मैं न करूं, ये तो केवल शिक्षा दे रहा है। और वो दुख लगता है हमारी उन्नति के लिए आता है दुख, इस वास्ते दूसरा दुख दे रहा है, उनका आचरण मेरे से विरुद्ध होने बुरा लगता है, तो ऐसा आचरण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा पक्का विचार कर रहे, क्योंकि ये आचरण बुरा लगता है, चुभता है, हमारे को चुभता है तो औरों को भी ये चुभता होगा, और पक्की बात चुभता ही है क्यों हमारे को चुभता है। तो आत्मोपमेन शरीर की उपमा से और सुख और दुख को देखता है, आत्मोपमेन सर्वत्र, केवल मनुष्यों में नहीं, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, कहीं भी समम पश्यति योगिन, क्या समम, सुखम वा यदि वा दुखम समम पश्यति, सुख और दुख को समान देखता है। जैसे शरीर में कहीं भी दुख नहीं सुहाता समान रीति से, और कहीं भी आराम होता अच्छा लगता है समान रीति से सब शरीर में, इसी तरह से मात्र जीव में कहीं भी हमारे द्वारा शरीर से, मन से, वाणी से, भाव से, किसी रीति से भी अगर दूसरे के दुख में सहमत होते हैं तो जल्दी साधन की सिद्धि नहीं होगी। मनुष्य की बड़ी कमजोरी है, भजन ध्यान साधन करने को तो साधन मानता है, और दूसरे को कष्ट देने में कोई क्या है, कुछ नहीं, बेपरवाह करता है, बरसों तक साधन करते रहो सत्संग तो सुधार नहीं होगा। और ये हो जाए ठीक अच्छी तरह से कि दूसरे को कम से कम कम से कम कम से कष्ट न दे, सुख देना आपका दूर रहा, अच्छी बात सेवा करो तो, न करो तो कोई इतनी हानि नहीं, बस दुख देने से बड़ी भारी हानि है, दूसरे को कष्ट पहुंचता है, ठेस पहुंचता है, इससे बड़ी भारी हानि है। तो इससे खूब बचो, जितना इससे बचोगा इतना ही अपने सुख की कामना दूर होगी, ध्यान देना। प्रश्न तो था सुख भोग का, और ये कैसे लाए, वो सुख भोग की वृत्ति दूर होगी जब दूसरे का दुख अपने को सुखने लगेगा, और दूसरे का दुख है वो हमारा दुख दूर करना सुख हो जाएगा, और दूसरे का दुख अपना दुख हो जाएगा। आत्मोपमेन कहने का मतलब किसी में कहीं भी दुख है तो वो दुख अपना हो गया, अपना दुख है। जैसे अपना दुख दूर करने के लिए मनुष्य की स्वतः चेष्टा होती है, इसी तरह से ही दूसरे का दुख देर करने स्वतः चेष्टा हो जाए। तो ये सुख भोग की जो रुचि है ना मन में, विषेन्द्र संयोग से सुख भोग की रुचि ये मिटेगी। और जब तक दूसरे के दुख की परवाह नहीं, अपना सुख लेता है, तब तक अपने सुख की वृत्ति मिटती नहीं। हम दुख नहीं देते हैं, फिर दूसरे को दुख देखने की जरूरत क्या है, कि अपने जो सुख बुद्धि है, भोग बुद्धि है, इसके मिटाने के लिए दूसरे का दुख देख, उसको दूर कैसे हो, ये चिंतन हो जाएगा, अपना दुख मिट जाए, अपने सुख भोग की रुचि मिट जाएगी। इस बार संतों के लक्षणों में लिखा कि पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दुख दुख दूसरे का दुख तो उनका दुख होता है, अरे सुख होता है पर को वो उनके सुख होता है। ये संतों के लक्षणों में गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में लिखा है पर दुख दुख और सुख सुख देखे, पर दुख तो दुख है और पर सुख देखे पर सुख है, तो दूसरा में सुख देखे किस वजह से इनमें दुख मिट जाए, ये एक लालसा भीतर लग जाए और दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति हो जाए। मनुष्य चाहता है जो हमारे पास अभी नहीं है वो मिल जाए, उसी से अपनी उन्नति मानता है। भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया परितीर्थाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयत। एक तो भोग नहीं है वो भोग मिल जाए, जो सुख है वो मिल जाए, एक है जो संग्रह हो जाए रुपया पैसा संग्रह हो जाए, जो रुपया नहीं है अपने पास नहीं है वो चीज मिल जाए तो निहाल हो जाऊं, और नहीं है वो मिल जाएगा तो फिर नहीं रहेगा, ये बात भी सच है। पहले नहीं है और फिर बाद में भी नहीं रहेगा। धन कितना ही मिल जाए, चाहे धन चला जाए, चाहे आप मर जाए, चाहे दोनों नष्ट हो जाए, साथ रहेगा नहीं, और अभी है नहीं, अभी नहीं है। अगर ये नहीं रहेगा ऐसी वस्तु की इच्छा करता है और ऐसी इकट्ठी कर लेता है तो समझता है उन्होंने बड़ी भारी उन्नति कर ली। अरे साधारण माँ बाप थे, हम लखपति और करोड़पति बन गए, हम बहुत काम कर रहे हैं, उसमें फिर अभिमान करता है। ऐसे भोग नहीं है वो मिल जाए तो निहाल हो गया, भोग मिल जाए ऐसी रहे कुछ नहीं। ये महान मूर्खता है, मामूली मूर्खता नहीं है। तो जानते हैं कि पहले नहीं था, अगर ये नहीं रहेगा और बीच में मिला राजी हुआ, तुमको बताया क्या है कि ये संस्पर्श जाप होगा दुख यो न एवते, जो संबंध जन्य जितने के सुख हैं वे सबके सुख दुखों के ही कारण है। और संसार में जितने दुख है, किसी तरह का दुख है, वो केवल संबंध जन्य सुख की इच्छा से ही है, और कोई दुख का कारण है ही नहीं। अर्जुन ने पूछा कि महाराज पाप का कारण क्या है, जो मनुष्य पाप नहीं करना चाहता वो पाप कर बैठता है, तो इसमें कौन इसको पाप में लगाता है। तो कहते हैं कामेश क्रोधेश, मानो जो अपने पास नहीं है उसकी जो कामना, वो भोग मिल जाए, वो सुख मिल जाए, रुपया मिल जाए, वो मान मिल जाए, वो बड़ाई मिल जाए, वो वाह वाह मिल जाए, वो निरोगता मिल जाए, वो आराम मिल जाए, क्या जो अभी नहीं है वो मिल जाए, ये कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है और संपूर्ण दुखों की जड़ है। अरे दुख पाप कोई चाहता नहीं, और उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की चाहना छोड़ देंगे, और उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की चाहना होने पर दुख भोगना पड़ेगा ही, कोई ब्रह्मा जी भी बचा नहीं सकते तो कोई भी। संबंध जन सुख है वो संपूर्ण दुख योनि दुखों का कारण है, उत्पत्ति स्थान है, दुख ही दुख पैदा होते हैं, दुख ही दुख पैदा होते हैं, कोरे दुख पैदा होते हैं, कोरे पाप पैदा होते हैं, एकदम थोड़ा सा संबंध के समय सुख होता है, पहले दुख पीछे दुख सदा दुख ही दुख रहता है, और शरीर खराब हो जाता है कि नरकों में जाता है, चौदह लाख जोड़ी में जाता है, भविष्य में दुख ही दुख पाता है, संबंध जन सुख की लोल होता है।
वो तो है
हुआ तो समझे हुए ना,
कोई
तो सुख की इच्छा होने से वो सुख मिलते ही उस सुख की इच्छा मिटती है, वो सुख होता है। ये बात तो कई बार कही है ना, जो इच्छा हुई वो इच्छा मिटने से सुख हुआ, वो समझे उस वस्तु से सुख हुआ, वस्तु से सुख हो तो उस वस्तु के लेके दुख होना नहीं चाहिए, तो उसका दुख नहीं है। दुख तो भीतर में इच्छा थी वो था दुख, वो इच्छा मिटती है, सुख होता है, इच्छा सदा के लिए मिट जाए, मौज हो जाएगा नहीं, तो जो नहीं है उसकी प्राप्ति का सुख मानते, उसी प्राप्ति को बहादुरी मानते, उसे कोई बड़ाई मानते, उससे भी बड़ा भारी काम हमने कर लिया, ऐसा बहम आता है और वो रहता है नहीं। तो जो सदा है और वो सदा रहेगा, केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली लोलुपता के कारण से उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, नित्य प्राप्त होने पर भी उधर दृष्टि नहीं जा रही है। अगर इसका संबंध त्याग कर रहे हैं तो वो तो हमारे को है जैसा का तैसा मिल जाएगा बिल्कुल, और मिला हुई तो है वो दृष्टि केवल नाशवान भोग और नाशवान संग्रह कर रहे हैं, जो कि है नहीं रहेगा नहीं, और वो है और रहेगा और था, और मिलने के बाद यदि आपको ना कोई फिर इसमें होगा नहीं, फिर कभी दुख होगा नहीं, किंचित मात्र भी कभी दुख नहीं होगा, और वो अपना है ये अपना नहीं है, कर्म फल है तो कर्म जन्य होने से अपना थोड़ा ही, अपना तो अधिकार है नहीं, और उस पर अपना अधिकार, तो इतना अधिकार जैसे बच्चा है, माँ है वो बच्चे के कहने के अनुसार चलती है और रो करके माँ से तय सु करा ले, ऐसे भगवान से तय सु करा लो, इतना अपने कब्जे में हो जाओ, सदा ही अपना सदा ही रहेगा, कभी भी बिछड़े ही नहीं, अरे हो भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, धन ने कभी कहा था मैं मुकुट मणि हूँ, मारे मुकुट मणि होते मैं तुम्हारा हूँ तुम हमारे, कभी नहीं कहा भगवान के, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, मम्मी वांश हो, कैसे बोले सुनवा, जो अपना है सदा अपने साथ रहते हैं, कभी वियोग हुआ नहीं, अभी वियोग है नहीं, अगर वियोग होगा नहीं, उससे विमुख हो करके जो अभी नहीं है उसको चाहते हैं, अगर मिल ही जाएगा तो अंत में तो नहीं रहेगा, नहीं में भर्ती होगा वो, क्या अकल पर पत्थर पड़ गया, जो ऊंध ही ऊंधा चाहते, जो नहीं मिल सके इच्छा कर से मिलेगा नहीं, अरे मिलेगा तो रहेगा नहीं, अरे इच्छा पूर्ति होगी नहीं, कितना ही मिल जाए तो पूर्ति इससे होती नहीं, पूर्ति होगी तो वो अधूरा तुम पूरे परमात्मा का अंश, और वो अधूरा संसार का अंश, संसार भी पूरा नहीं है तो वो पूरा कैसे होगा, और परमात्मा पूरा तो तुम पूरे और परमात्मा पूरे, और वो तुम्हारे खास अपने धन के लिए धर्म छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, सब छोड़ के धन पीछे पड़े, अब वो सुख जाते हुए वो धन जाते हुए पूछता ही नहीं आपसे, उसको इस निर्दयी को दया नहीं आती कि मेरे लिए धर्म कर्म छोड़ा है, पुण्य छोड़ दिया है, सत्यवादी छोड़ दिया, झूठ कपट बेईमानी बड़े बड़े पापों को स्वीकार किया, तो कम से कम सम्मति तो लेते मैं जाता हूँ भाई, भगवान के लिए ये दारा अगर पुत्र अब्राम, हाँ सा घर घर छोड़ दिया, लुगाई छोड़ दी, बेटा छोड़ दिया, बड़े बड़े बूढ़ों को छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, ये लोग छोड़ दिया, पर लोग छोड़ दिया, ऐसे छूट नहीं छूटने वाला, छूटने वाले छोड़ने से भगवान राजी हो जाए, ये धाराधार पुत्र प्राण वित्तम प्राणम एवं परम हेतु मांग शरण जाता, अब कितना ऐसा कथम ताश तक तुम उठता है बता, उनके छोड़ने का उत्साह भी मन में मेरे कैसे हो सकता है, मन में भी कैसे आ सकती है, इतना त्याग किया, वाह वाह सब बड़ा त्याग किया, क्या इनको कोई रख सकता है क्या, दार आगार पुत्र आपदान वित्तम प्राणम एवं परम, ये सब छूटने वाला, छूटने वालों के छोड़ने से भगवान लगे गया, कितना सस्ता है उसे, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात, अब छूटेगा जरूर ही छूटता है, छूट से चला गया ना, आज दिन तक छूट गया तो अब कैसे रहेगा, कितना ही धन कमा लो छूटेगा कि नहीं, कितना ही भोग भोग लो छूटेगा कि नहीं, कैसा ही शरीर प्राप्त कर लो छूटेगा कि नहीं, कितनी निरोगता हो जाए छूटेगा कि नहीं, ये सोच लो, किसी के संग बोलो तो वो साथ रख सके तो और उसके लिए उद्योग करते हैं, उसी की सराहना करते हैं, वो मिलने से राजी होते हैं। क्या हो गया तुम्हें, कुछ अकल तो होनी चाहिए ना, कर क्या रहे? और वो परमात्मा मिलने पर कभी उद्योग तो रहे, और मिलने पर नहीं, वो अपनी तरफ से तो हमारे अलग है नहीं, हम विमुख हुए इस बात से नहीं मिल रहे हैं। सन्मुख हुए जीव मुए जब ही जन्म कोट या बिना से ही तब, क्योंकि सब पीछे चिपका हुआ है पाप अब कोटी है, भगवान सन्मुख होते करके पीछा चिपका हुआ है पकड़ा हुआ है, उठा भी जब न तो वही हो, तो न तो वो ही रहे, केवल आप भगवान को अपना मान लें हमारे हैं और ये हमारे नहीं है, इतनी सी बात है। कठिन नहीं है, कठिन आप जब तक पक्का विचार नहीं करते तब तक बड़ा कठिन है, पक्का विचार करे फिर क्या कठिन है, हम पक्का हो गया बस युद्ध चलेंगे, हम तो स्वीकार करो, दुख हो, संताप हो, जलन हो, अपमान हो, निंदा हो, रोग आ जाए, मृत्यु आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितना दुख आ जाए, हम तो इसको प्राप्त कर युद्ध चलेंगे, हम तो फिर कोई नहीं हटा सकता आपको, दूसरों की चीज कब तक रहेगी अपने पास, अपनी है नहीं, पहले थी नहीं तो रहेगी, वो रहेगी कितना देर, और थोड़े से लोलुपता करने कितना पाप हो जाए, कितना दुख हो जाए, 84 लाख जोड़ी मर गए, सबका सब इस भोगेच्छा संग्रह इच्छा के ऊपर ही अवलंबित है, ये आधार से लाई गई संग्रह और भोग की इच्छा ऐसा ना, इसके ऊपर सब नर है, सब दुख है, 84 लाख जोड़ी है, दुख संताप पाप कोई बाकी नहीं है, सबके सब इसके ऊपर, और उसके बाद भी मानते हैं बहादुर, उन्नति मानते हैं, उधार करो, कितनी बड़ी भारी भूल है, इन चीजों को लेकर के सुख मानते हैं, बड़प्पन मानते हैं, उद्योग करके मेरा उद्योग सफल हो गया था, अरे महान मास हो गया तेरा, इतना धन मिल गया था, बहुत हमारा उद्योग सफल हो गया, महान विफल हो गया, सब पट छूट जाएगा एक पले के लिए, कुछ नहीं, अरे उस परमात्मा के लिए करता तो छूटता नहीं कभी, और अभी इस जमाने में बैठे बैठे इस शरीर में लघुपति और करोड़पति सुखी नहीं है, और परमात्मा के भजन में लगा वो सुखी, मौज हो रही और आनंद हो रही हर हालत में, अभी वर्तमान में ठीक होगा, कौन देगा कौन पता नहीं, जितना जितना छूट गया उतना बड़े सुख है, जितना छूटेगा उतनी शांति, संतोषाकृतृप्ता नाम यत सुखम शांत चेतसा कुतस्तद धन लुब्धा नाम चेतस्तारक, जब दौड़ते हैं वो सुख साधा, श्लोक आया है, आशा रूपी रस्सी से बांधा हुआ तो भागता फिर है, और उसे खुल गया जगह मोल लगा बांधा आशया ये कृता दासा ते दासा सर्वे ही नाम, आशा के दास है, धन मिले, अमुक मिले, मान मिले, अडबड़ाई मिले, वे संपूर्ण शरीरों के गुलाम है, और आशा दासी कृता ये नस्य दासा ते जगत, आशा दासी कृता ये जिसने आशा को दास बना लिया, दासी बना लिया, तस्य दासा ते जगत, सब दास हो गया, एक आशा का दास हो जाए तो दुनिया मात्र सवार हो जाएगी तुम्हारे, सब देगा दास दास है, वृक्ष के पास हो तो इनसे वो ले लें, वो चले सब ले लें, वृक्ष देंगे सबके दास, इधर मिल जाए लाल भी मिल जाए, गाय भी मिल जाए, गले भी मिल जाए, पौधा भी मिल जाए, कुछ मिल जाए, पूजा मार में बैठे लखन देना, मनुष्य होकर के और अकल कठेगी आप समझ के भावे जो देखते हैं ये ही संतुष्ट होगा जो संबंध जन सुख जितने गए सब दूर के जगह रहते हैं। अब शरीर के साथ में रहेगा जवानी के साथ में रहेगी तो इंद्रियों के साथ में रहेगी भोग के नाव में रहेगी तो जाने जाने वाले उनके उनमें लगे हैं रात दिन कितनी गीता बता रही है भाई इसकी आशा छो पकड़ो लोग है नहीं मतलब क्या है मृत्यु प्राप्ति की प्राप्ति कठिन है तो अप्राप्ति की प्राप्ति होगी ना वो कभी अपराध होता ही नहीं अपने उससे विमुख हुए वो विमुख भी नहीं हुआ अपने विमुख होने से दूर दिखता अरे संसार के सामने होने संसार नजीक दिखता है संसार कभी नजीक आया नहीं वो कभी दूर हुआ नहीं क्या कहते सत्य देखिए भगवान दूर हो सकते नहीं और ताकत नहीं दूर होने अरे पदार्थों के पास में आने की ताकत नहीं ठहरने की ताकत नहीं तो ये मिल जाए आपके साथ में ये ताकत नहीं है भगवान
यह प्रवचन परम सद स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 31 अगस्त 1981 को प्रातः 5 बजे भूला करके मुंबई में लगन था
अरे शरणम अरे हरे शरणम अरे शरणम अरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम
नारायण नारायण कल वाली बात पर कोई विचार किया गया कोई आया हो तो बताओ भाई आप थोड़ा ध्यान दो मैं ये बात कर रहा हूँ बड़ी सीधी है सरल है वो बहुत ही सरल है थोड़ा आप ध्यान दें और उस बात पर दिल रह जाए पक्के रह जाए उस पक्कापन में बाधक क्या है ये संसार के भोग और संग्रह को जो आदर दिया है अभी बस यही बाधा है इसको आदर अधिक दे दिया रुपये पैसों को बहुत ज्यादा आदर दे दिया जन्म बिगड़ जाए नर्क हो जाए 84 लाख जोनी में जाना पड़े अपमान हो जाए निंदा हो जाए बेइज्जती हो जाए रोग आ जाए तो परवाह नहीं रुपया इकट्ठा करना ये बहुत बड़ी बीमारी है दूसरे को भोग भोगना सुख भोगना रुपया हमारा जमा रहे खर्च न हो जाए सुख भोगते रहे आराम भोगते रहे ये खास आफत है इस कारण से अनुभव होने पर भी इसका आदर नहीं होता क्योंकि आदर की जगह रोग ली रुपये पैसों ने और सुख भोग ने अब आप शीघ्र ले जाओ कितनी बातें अनुभव नहीं होगा झूठ कपट बेईमानी जाल शादी ठगी धोखेबाजी चोरी ये सब कुछ कर लो विश्वासघात बड़े भारी पाप हो जाएंगे और सीख करके आप पंडित बन सकते हो बड़े भारी व्याख्यान दे सकते हो वक्ता हो सकते हो लेखक हो सकते हो बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तक लिख सकते हो परंतु महान शांति वो नहीं मिल सकती अनुभव नहीं हो सकता ये सीखना और अनुभव दो चीज है बिल्कुल अलादी अलादी रात दिखे तरह तो वो कब होगा तो विहार का मान ये सर्वान ये जो कामना है ना सुख भोग की और संग्रह की मन में, इतना रुपया हो जाए, इतना हो गया, इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, और बिल्कुल कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, बिल्कुल एकदम खाली जाना पड़ेगा, लाश भी यही पड़ी रहेगी। अरे भोग भोग करके जो शरीर को ठीक किया ये शरीर भी यही पड़ेगा। पहले ये अपना था नहीं, अगर ये अपना रहेगा नहीं, एकदम प्रत्यक्ष बात है। परंतु ये कहने सुनने से समझ नहीं आती, ठीक व्याकुलता जागृत हो भीतर में, ये भोगों से उपरति हो जाए, भोगों से संग्रह से उपरति हो, जलन पैदा हो जाए, तभी बात समझ में आएगी। जब तक इनमें सुख लेते हैं, संग्रह में रुपए पैसों में भोगों में सुख लेते हैं, तब तक ये बात अकल में नहीं आती। इस बात के विहार कामान ये ये उपसंहार करते हुए कहते हैं, उपक्रम में कहा है प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सिद्ध प्रज्ञ के लक्षणों के आरंभ में ही मनोगतान कामान सर्वान प्रजाति प्रकरण ज्यादा त्याग देता है और आत्मनिर्वाद तब परमात्मा स्वरूप में स्थिति होती। वही उपसंहार कहते विहार कामान यह सर्वान प्रमाण करते निष्प्रिय संपूर्ण कामना है, ये दो ही खास मुख्य है संग्रह की सुख की। और इस आंध्र पर सैकड़ों हजारों अनियन की गए मुख्य दो ही, संग्रह हो जाए चीजों में सौ रुपये पैसों का मकान जायदाद आदि हो जाए और बस सुख हो गए, आराम ले ले, जीते रहे आराम से रहे, इन कामनाओं का प्रजा हाथी यदा कामा सर्वान पार्थ मनोगतान, ये मनोगत है, ये मन का स्वरूप नहीं है, मन नहीं है, ये मनोगत है कामना है। और संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया जाए, आज मर जाए तो ये नहीं कि मरना नहीं है, हमें तो जी जाए कहते हैं, इसमें एक तो जीने की इच्छा रहती है, एक मरने से भय रहता है, एक काम करना बाकी रहता है, एक जानना बाकी रहता है, ये आदमी की बाकी रहता है। कितने कष्ट में आ गए तो प्राण छूट जाए, ये चाहते नहीं, तो शरीर बहुत ही प्यारा लगता है, जाएगा ये तो जाएगा, उनका मोह पहले से ही छोड़ दे तब तो काम ठीक हो जाएगा, और अगर पहले से ही मोह रखा तो बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा होगी। और भोगों में माया में उसमें पदार्थों में रुपया में आसक्ति रह गई, बहुत दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा होगी, मन रह जाएगा अटक जाएगा वहां भोग माया में रह जाए वासना इस गुरुदेह धरा से साफ बढ़ना पड़ेगा, न जाने क्या क्या बढ़ना पड़ेगा, भूत प्रेत पिशाच बढ़ना पड़ेगा। एक संत की बात सुनी हमने, कहां तक सच्ची है परंतु सुना ही ऐसा, वृद्ध संत थे, गिरफ्त बिल्कुल पैसा छूते नहीं, एक आंदोलन में रहते थे, एक भाई उनकी बहुत सेवा करता, रोजाना भोजन पहुंचाते, हर चीज पहुंचा देना, बड़ी सेवा करता, उसकी कोई बहुत काम हो गया जरूरी तो जाना पड़ा कहीं दूसरे देश, तो जाना पड़ा तो उसने कहा कि महाराज मैं तो जाता हूँ, उसे अगर हमारी सेवा तुम्हारा थी नहीं, तुम जाओ, वो बोले बहुत ना कहा बाबा, उसने कहा कि महाराज कुछ सेवा बन जाए, लेकिन कौन करेगा कौन नहीं है, तो उसने 20 रुपये उनके सामने गाड़ दिए, काम पड़े तो आप सूते में किसी कह देना, वो नाना करते रहे परंतु तो गाड़ी, वो तो चला गया, किसी बाबा जी बीमार हो गए, बीमार होकर मर गए, मरकर भूत हो गए, अब भूत हो गए तो वहां कोई रहे तो रात्रि में उनकी खड़ा हो गया, खट खट चलेगा, खड़ा खड़ा हो गया, तो बात क्या है, तुम सोचा है यहाँ, वो आया तो लोगों ने कहा भैया ऐसे वहां खड़ा उछलती हुई दिखती है, खटखट होता है, कोई दूध पेट है, क्या बात है, और कोई किसी को दुख नहीं दिया, ऐसी बात, तो वो रात्रि में रहा और उन्होंने बड़ा दुख होते प्रार्थना करी, तो उनसे उन्होंने बताया कि तेरे को किया है इसमें मेरा मन है, अब ये कहीं तुम लगा दे तो मैं खुद करेगा, तो बाहर दूसरे में रखे उसमें रुपए पड़े हैं, ہمارے لیے نہیں جائیں گے اس لیے جاؤ گے جاؤ گے خیر ہمارے لیے جو پڑے سب برندادن میں سنت ہے درد ابھی دیکھو نام بھول گیا میرے درشن کیے ہوئے ہیں پرتیشت سنگ تھے نمبار سمپردائے
کے
ہنس دس جی مہاراج دھوبی گلی میں دھوبی گلی میں ان کا استھان ہے بڑے اچھے سنگ تھے تو ان درشن کیے بڑے پرتیشت سنگ تھے تو چمن رام جی کے سامنے انہوں نے بات سنائی تھی چمن رام جی میرے کو سنائی تھی ایک گلی میں بیٹھا ہوا مانگتا پیسے مانگا کرتا تھا وہ مانگتا تھا پیسے اس کے پاس کوئی روپیے سے کم ہو گئے اتنے پیسے تھے اور مر گیا تو مرنے کے بعد وہ چنکڑا پڑا وہاں چنکڑا چھوٹا سا شام بیٹھا دیکھا گی رستے پر ہے کسی کاٹ جائے گا پھر پھینک دیتے کوئی دور پھینک پھر وہیں کپڑا پر بیٹھا کئی بار دیکھا یہ بندہ میں نے گھری ہوئی گھٹنا کئی بار دیکھنے پر بھی پھر ہٹانے تو پھر کیا بات کیا ہے تو صابو پھینک دیا پھر اس کپڑوں کو دیکھا تو پیسے ملے وہ پیسے کسی میں لگا دیے رنگ پھر صاف دیکھنے میں آیا تو سنتوں نے یہ بات سنائی یہ دشا ہوتی تو یہ جو واسنا رہتی ہے نا یہ بہت ہی بھینکر ہے وہ واسنا کب رہتی پریتا ہوتی نا بس وہ پریتا خاص جو پریتا ہے اس جگہ بھگوان کا پریم جاگرت ہونا چاہیے یا یہ جو ٹھوڑ ہے اب وہ جو پدارتھوں کو اور بھوگوں کو سکھ کو ستھان دے دینی وہاں اب آپ باہر سے چاہے کتنا ہی آپ بڑھیا بڑھیا کام کریں پر بھیتر سے وہ جو آکرشن ہے پریتا ہے وہ خطرناک ہے بھوگو ایشوری اس وجہ سے بہار کامان یہ سروان تمہارے استر پہ نسپری ہے سمپورن کامنا کا تیاگ کر دے اور نسپری کا ارتھ ہے پرواہ نہ رکھے کہ بھی کیسا نرواہ ہوگا کیسے میرا جیون چلے گا یہ پرواہ نہیں رکھے من میں اور جیون تو چلے گا جن کرموں سے شریر ملا ہے وہ شریر کرموں سے ملا ہے اسی رکشا کے لیے بھی کرم ہے سدا ساتھ میں اور اسی طرح سے جو ہوگا اس کا دھنی ہے تو بھی زیادہ بھوگ نہیں بھوگ سکے گا اور سادھارن ہے تو بھوگ مل جائے گا تو نہیں ملنے والا نہیں ملے گا ملنے والا ملے گا ہی ملنا پڑے گا من میں جو پریتا ہے وہ بادھک ہے وہ نہیں ہوگی تو چیز ملے گی روپیہ بھی ملے گا وستو ملے گی سب ملے گی آدر ملے گا مہیما ملے گی بھیتر میں جو انتر آکرشن ہے پریتا ہے یہ یہاں ہے غلط اس کا تیاگ ہونا چاہیے تیاگ نام اس کا ہے باہر سے تیاگ ہے وہ بھی بڑا اچھا سہایک ہے پرنتو واسطو میں تیاگ وہاں ہے جو بھیتر میں پریتا ہے سنگرہ میں بھوگوں میں اچھا لگتا ہے چھوڑنا نہیں چاہتے یہ چھوٹ نہ جائے کہیں یہ بس ساتھ عمر ہے یہ جو بھیتر میں پریتا ہے یہ خاص جنم من دینے والی چیز ہے مہان نرک مل جانا چاہیے جتنے سنسار کے دکھ ہے اور جتنے سنتاپ ہے جتنے پاپ ہے ان سب کی جڑ یہ کامنا ہے یہ ادم میں ساتھ ادم میں ساتھ اتنی اچھا کام سب دیتا کامنا کس کا یہ میرے کو مل جائے اتنا اور آ جائے اتنا آواز آ جائے اتنا اور پڑے اتنا میرے پاس بنا رہے اس کا نام کامنا ہے نسپری نام ہے نرواہ تو ہونا ہی چاہیے کم سے کم نرواہ کی چیز تو ہونی چاہیے تو نرواہ کی چیز تو ہوئے بھی آپ سے آ گئی تم آشا کرتے ہو یہ غلطی ہوتی ہے یہاں اور جو پراپت ہے ان میں ممتا نہیں پراپت ہے ان میں کامنا اور میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں میں وشیش جانتا ہوں میں ٹھیک ہوں یہ اہمتا کیا چیز بتائی بہار کامان یا سرمان تو ماسٹر کے مستری ہے میرے ممور میرا اہنکار ہے سشانت ملی گئی अपने में कुछ अधिकता दिखती है दूसरों से, तो दूसरों में वो नहीं है, मेरे में है, ये है अभिमान। विहाय कामान यह सर्वान पुमान स्तर भी निष्क्रिय है, मेरे मोह मेरा अहंकार। प्राप्त वस्तुओं में तो ममता है, अप्राप्त वस्तुओं में कामना है, और अपने में दूसरों से विशेषता दिखती है ये अहंकार है। और आवश्यक है इतनी चीज तो जरूरी है, वो मर थोड़े जाएंगे इतना तो चाहिए, न चाहिए, ये मन में परवाह है, इसका नाम है स्त्रिया। इनका सर्वथा त्याग हो जाए तो शांति इसी क्षण मिल जाए, अभी मिल जाए महान शांति। अशांति पैदा करने वाली चीज है, इनका त्याग करना नहीं चाहते, इनको तो रखना चाहता है, शांति चाहता है, ये कभी होगा नहीं। ये जब तक लालसा रहेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी, एकदम सच्ची एकदम ठीक। व्याय कामान यह सर्वान पमान स्तर, ये कामना के त्याग से ही कर्मयोग सिद्ध होता है, कर्मयोग के द्वारा सिद्ध पुरुष उसका नाम सिद्ध प्रज्ञ होता है। और यही पहले आरंभ में सिद्ध प्रज्ञ लक्षण क्या है तो प्रजाति यदा कामान का, अरे यहाँ बता दो निष्प्रिय निर्मल निरहंकार अहंकार ममता चले गए, फिर रह जाएगा कि ऐसा ब्राह्मण स्थिति, फिर ब्रह्म स्थिति है, ऐसा ब्राह्म स्थिति प्राप्त है, मेरे नाम प्राप्त इसको प्राप्त होने को मोहित नहीं होता। स्थित्वा से आमंत्र काले भी ब्रह्म निर्वाण मिल, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती। अब बोलो वो शंका हो तो बोलो। लंगोटी में रह जाएगी, कपड़े में रह जाएगी, लंगोटी में रह जाएगी। ये तो आदमी सावधान रहे तो भी रहेगा, शरीर में तो रह ही जाएगी। और शरीर तो मूल है, शरीर वास्ते ये चाहे निर्वाह, ये जो निर्वाह की इच्छा है ये शरीर में ममता रहनता होने से ही है। और इच्छा से होगा नहीं, इच्छा से सही रहेगा नहीं, जीना चाहते चाहते ही मरते हैं लोग, फायदा तो कोई सही नहीं है, नुकसान कोई सही बाकी नहीं। खूब सोचा है मैंने, विचार किया है, तो यूं करो आपके अगर मन में करने की है तब तो नाम का तो जप करो, और प्रार्थना भीतर से करो, वो भीतर की प्रार्थना हे नाथ मेरे छूट नहीं दी, हे भगवान हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मेरे छूटते नहीं, ऐसी पुकार गया हरिया बंदी मान जो करिए कूक पुकार, भीतर से पुकारते रहो हरदम, ये लगन से पुकार सुन जाए, वो परम दयालु विराजमान है, उसकी कृपा सो गया, उपाय तैयार है, हाँ काम में लाने का उपाय, बात मेरे से बहुत बड़ी हुई है, तू तो मेरी इसमें से शौक रही है, ये शौक रहती है ना उसमें लग जाता है वो, इन बातों में हमारे शौक रही है भाई, और है अब भी, अब भी ऐसे क्या चीज है।
यह प्रवचन परम संतरी स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 1 सितंबर 1981 को प्रातः 5 बजे नित्य स्थिति के बाद भीमासर के मुरली मनोहर पर हुआ। राम राम राम।
बोलने का समय नहीं है, किसी बात पर बोलो, प्रश्न पूछो, कोई आपके जो उलझन हो साधन में जीवन में उलझन वो सुधारनी है, ऐसे पूछो पढ़ लो, घर ही पढ़ लो। राम गीता आकार संग पुरुषार करते इतना समय हमारे पास कहाँ राम 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 हमारे मन में देगा ऐसी अपने को शरीर मानने से ही आप बताते जितना जो कुछ है अहंगा जन्म मरण दुख संताप ये सब का सब ही एक अपने को शरीर मानने से है अहंगाता और शरीर अपना स्वरूप है नहीं ये यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है और ये इतना प्रत्यक्ष है कि बालकपन में मैं था वही मैं हूँ ऐसा अपने विषय में निसंदिग्ध रूप से जटी हुई बात है और शरीर था बचपन में वो वैसा नहीं है ये बदल गया इतना बदल जाता है कि जिसकी पहचान होनी कठिन है और अपने में वही मैं हूँ इसमें संदेह की कहीं गुंजाइश नहीं तो विचार करना कम से कम शरीर में नहीं हूँ मैं शरीर हो ही नहीं सकता ना स्थूल हूँ ना सूक्ष्म हूँ ना कारण हूँ क्योंकि स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ ना बिल्कुल अभिन्नता है क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रचती है अधम शरीरा अब कौन सा वो शरीर है जो इन पांचों से रहित है संसार के साथ बिल्कुल शरीर की अभिन्नता है अब ये शरीर मैं हूँ तो ये सब दिखता है ये जरूंगा सभी मैं ही हूँ फिर और ये सब मैं नहीं हूँ यह कहलाता है तो यह मैं नहीं हूँ तो यह का तो छोटा सा अंश है शरीर ये मैं कैसे हो गया जैसे स्थूल शरीर की स्थूल सृष्टि के साथ एकता है ऐसे सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म सृष्टि के साथ एकता है उसी का ही अंश है सूक्ष्म शरीर पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय पांच प्राण मन बुद्धि ये भी तो उसी का ही है जो ये वायु चलता है उसी के साथ प्राणों की एकता है जितनी जितनी इंद्रियां हैं संत इंद्रियों की एकता है प्राण है इंद्रियां है मन है बुद्धि धातु एक है तो यहाँ का मन अलग हो गई क्या बात है ऐसे स्वभाव सबका स्वभाव धातु चीज एक है अगर कुछ पता नहीं लगता कि कारण शरीर क्या है सूक्ष्म शरीर से अगर पता नहीं लगता तो पता नहीं लगता एक है सब में अज्ञान प्रकृति होती है प्रकृति भिन्न भिन्न होने पर भी धातु एक है शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी पांच भौतिक एक है ऐसे प्रकृति स्वभाव एक वो भी एक है और सुषुप्ति में सभी एक हो जाते हैं भिन्नता रहती ही नहीं तो कारण शरीर सब एक ही हुए अब उसमें एक सुषुप्ति हो तो शरीर मैं हूँ ये मैं नहीं तो मेरा है ये मेरा नहीं ये बात सच्ची नहीं है शरीरों के साथ अपनी एकता है ये सच्ची नहीं है व्यवहार के लिए काम किया व्यवहार में ले परंतु अपने को मानना ऐसा है ये गलती है अगर इस गलती को आज हम मिटा दें महान शांति मिले बड़ा भारी आनंद मिलेगा और वो मिटाना केवल शास्त्रों से सुनकर सीख लेना नहीं है और मैंने जैसे कह दिया विवेचन कर दिया इतना विवेचन करना ही काम नहीं है इदं शरीरं तो इदंता से देखना चाहिए जैसे ये छप्पर अलग दिखता है ऐसे भीतर से अनुभव होना चाहिए कि ये सब का सब ये है, मैं इनको जानने वाला हूँ। अलग अनुभव होना चाहिए, सीखना नहीं। सीखना है, मानना है, ये ज्ञान नहीं है। मान्यता भी दृढ़ होती है तो ज्ञान जैसी प्रतीत होती है, परंतु वो मान्यता मान्यता ही होती है, बोध नहीं है वो। इसका बोध होना चाहिए साफ साफ, जैसे युक्ति से शरीर परिवर्तनशील है, मैं वही हूँ ये दिखता है, ऐसे अनुभव में आ जाए कि ये परिवर्तनशील मेरा स्वरूप नहीं, अनुभव हो जाए तो फिर आपको तत्व ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई, परमात्म तत्व की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अरे वो स्वरूप की प्राप्ति है, वो नित्य प्राप्त ही प्राप्त है वो, और प्राप्त की ही प्राप्ति है, तो अपना स्वरूप अप्राप्त कर भाई, किसी को भी अपना स्वरूप प्राप्त नहीं है क्या? और अपना स्वरूप प्राप्त नहीं है तो प्राप्त है भी क्या? जो क्षण प्रति क्षण बदलता है वो प्राप्त कैसा? वो प्राप्त हुआ ही नहीं कभी, किसी को होगा भी नहीं, प्राप्त तो स्वरूप नहीं होगा। तुम अप्राप्त को प्राप्त मांगने से वो प्राप्त अप्राप्त जैसा हो गया, जब तक तो अप्राप्त को अप्राप्त न माने तब तक प्राप्त प्राप्त दिखेगा नहीं। युक्ति से भक्ति आएगी, शास्त्र सुन करके मान सकते हो, मानना ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज्ञान ऐसी चीज नहीं है, ज्ञान तो तब बतुल होता है एकदम उसी क्षण होता, क्यों है ज्ञान तो वैसे ही होगा, उसमें अभ्यास नहीं है। अभ्यास है ये उपासना है, उपासना बोध नहीं होता, चाहे वो प्रतीक हो चाहे अहंग्रह हो, उपासना उपासना ही है, बोध नहीं। बोध अगर इसके बिना चैन न पड़े, अचानक शरीर में ऐसा भी करे तो बेचैनी हो जानी चाहिए, आप क्या करो कैसे आप अपने के लिए बेचैनी हो जाए तो बोध हो जाए। नींद में सोते हुए आदमी तो सूर्य चबक जाए, तय किया जाए दिन खटकुल जाए, ऐसे अपने को शरीर मांगने का दुख हो जाए, पैदा ग्रहणशील पैदा हो जाए, कैसे करें क्या करें, ये सूर्य का अभ्यास मिटता नहीं, ऐसा दुख हो जाए वो दुख हो जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत रहने की, मिटती वही है जो नहीं होती है, होने वाली चीज मिटती नहीं, ना करो विद्य तो सतह सत का अभाव नहीं होता, और देह में अपना मैंपन और मेरापन मिटता है तो मूल में है नहीं, ये बात पक्की है। तो सबसे पहले साधक के लिए ये मानना चाहिए दृढ़ता से कि ये शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है, ये बिल्कुल झूठी बात है, हमारे समझ में नहीं आई, बोध नहीं हुआ तो न हो, परंतु है नहीं ये बात, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा पक्का विचार कर जोर लगाया जाए, ऐसा जोर लगाने पर अनुभव नहीं होगा तो वो जागरूकता पैदा हो जाएगी। भले मत ठहरो, आप ये जो मान्यता मैं कहता हूँ ना, बुद्धि मत ठहरो, आप ठहर जाओ, बुद्धि भले मत ठहरो, बुद्धि ठहरना न ठहरना कोई बड़ी बात नहीं है, ये मत करो, ये मैं नहीं हूँ ये करो, अहम ब्रह्मास्मि करके मैं ब्रह्म हूँ ये इतना जल्दी लाभदायक नहीं है जितना ये मैं नहीं हूँ ये लाभदायक है। बहुत ही उपासना है, परंतु ये जो मैं नहीं हूँ ये उपासना नहीं, ये बोध होगा पराक्षर, अरे मैं खूब विचार कर ये पहले ये तो निर्णय कर लो, शरीर में नहीं हो सकता कभी, न शरीर मेरा हो सकता है, ऐसा करे जो लगाओ ठीक तरह से अनुभव करना, ऐसा पक्का विचार करो, पक्का विचार करने पर अनुभव न होने से दुख होगा, उस दुख में ताकत है एकदम समझ से ज्यादा, वो जितना तीव्र होगा उतना जल्दी जाएगा। क्या कहते हैं, मैं क्या हूँ मत मानो, मैं क्या हूँ कहने पर मन बुद्धि साथ में रहेंगे ही, जड़ की सहायता के बिना मैं क्या हूँ ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता, और समाधान भी बिना जड़ता के साथ लिए कर ही नहीं सकते। इस वजह से जड़ की सहायता से जड़ की निवृत्ति नहीं होती, चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। मैं चिन्मय हूँ तो बुद्धि के द्वारा हर अंत साथ में रहेगी ही। हाँ जी, इसको कभी दूर कर सकते नहीं आप, अपने को बड़े बड़ा ब्रह्म मानने पर भी जड़ता का सर्वथा संबंध विच्छेद नहीं होता, और ये जड़ मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, तो ये नहीं नहीं का जोर लगेगा जड़ता पर ही। चिंतन भी जड़ता का है, निषेध भी जड़ता का है, जैसे झाड़ू दिया जाए तो कूड़ा करकट जिस धातु की चीज है उसी धातु का झाड़ू है, और झाड़ू से वो साफ करके झाड़ू भी फेंक दिया जाए तो साफ मकान पीछे रह जाएगा, उसके लिए उद्योग करना नहीं होगा। तो ब्रह्म के लिए उद्योग करना नहीं होता, और उद्योग होता है बिना प्रकृति के सहायता लिए नहीं होता। इस बात से ये नहीं हूँ बिल्कुल ये कहता हूँ मैं, मेरा क्या कहता है इधर से, यह मैं क्या कर देता है, और मैं यह नहीं वो मैं, और यह एक जातिगा है मैं, यानी ये दो की तरफ जाता है, एक मैं जड़ता की तरफ है, एक मैं चेतनता की तरफ है। तो चेतनता की तरफ मैं मानने से जड़ता का जो मैंपन है वो मिटेगा नहीं, मैं यह मैं नहीं हूँ ये कहने पर स्वरूप स्वतः रहेगा। मैं यह हूँ ऐसा कहते हैं कि अगर, परंतु वास्तव में साधक के लिए ये मैं नहीं हूँ ये बहुत उपकारी चीज है, बहुत ज्यादा उपकारी है। मैंने दोनों तरह की बातें पढ़ी है, विचार भी किया है, उससे मैं अपनी धारणा कहता हूँ, आपके जैसे नहीं तो आप जैसे कार्य करें, पर निषेध मुक्त जितनी स्वरूप स्थिति जल्दी होती है उतनी विधि मुक्ति जल्दी नहीं होती। महिमा कई ग्रंथों में विधि मुक्ति ज्यादा आती है, तो अपने विचार से ये इतनी व्यक्ति नहीं है, उपासना दोनों है, पर निषेध किया जाए ये बहुत ही बढ़िया चीज है। ऐसे ही दुर्गुण दुराचारों का नाश किया जाए, इनका त्याग किया जाए, उतने सुर्गुण सदाचार आएंगे, सदाचार की विधि में करोगे सदाचार जल्दी उतना नहीं आएगा। जैसे मैं सत्य बोलूंगा तो उसमें जितना अभिमान रहेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा इसमें अभिमान नहीं रहेगा, झूठ नहीं बोलना कौन सा उपाय, बड़ा भारी काम कर दिया, सात बोल तो बड़ा भारी काम किया, उसका अभिमान जल चुकेगा नहीं। तो निषेध पर बात बहुत बढ़िया है, ये मैं नहीं हूँ ये मैं कैसे हो सकता हूँ, हो नहीं सकता। हाँ तो बुद्धि साथ में रहेगी, जड़ता का विच्छेद कैसा होगा, जिसका विच्छेद करना है उसी को ही सहायक लिया है, वही उसका विच्छेद। बहुत वर्ष लग जाते हैं इस तरफ विचार न करने से, और सोचता रहता है, निकलता रहता है, स्थिति वो की वही रहती। जब गाड़ी का बैल चलता है उम्र भर वहां का वही रहता है, ये दशा रहती साधक नारायण नारायण नारायण। खूब विचार करो इस बात पर, गहरा विचार करके फिर कल आओ, मौका लग जाए पूछो। सरल भी कैसे हो, सरल तो बताया ना अभी कि मैं तो वही हूँ जो बात पद में था वही हूँ, शरीर वो नहीं है, ये बदला है, मैंने बदला नहीं, कितनी सीधी बात है, पर ये सीख लेने से नहीं होगा, केवल सीख लिया इस काम में।
राम राम राम। ये प्रवचन पूज्य स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 सितंबर 1981 को बिनासर के मुरली मनोहर दौरे पर हुआ और आगे 3/9/1981।
हरे शरणम 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 हरे शरणम। नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि शरीर से लोग कैसे हैं, इसमें एक बात पहले अगर ध्यान कर ली जाए तो बहुत ही ठीक है। हम शरीर से अलग हैं ये मान समझ में आ रहे कहना है, बुद्धि में बैठे कहना बैठे अनुभव हो कहना हो, परंतु ये बात ठीक है शरीर से हम अलग हैं ये बात नहीं सकती है। शरीर के साथ में एक आत्मता भी होती है, ये तादात्म्य मानने के कारण से है वास्तव में हम शरीर से अलग हैं। ये जितना दृढ़ निश्चय होगा उतना वो उपाय बहुत जटिल हो जाए। सबसे पहली बात ये है शरीर से अलग होने की जो बात आती है तो अलग है तभी अलग होने की बात आती है, और अलग पहले से होता ही वो अलग हो सकता है। जो सदा ही साथ ही रहने वाला और अलग होने वाला नहीं हो वो अलग हो सकता ही नहीं। त्याग उसी का हो सकता है कि जो हमारी वास्तव है हमारे साथ में एकता नहीं है, और एकता सच्ची है तो ना भाई विद्युति सत का अभाव होता नहीं फिर उसका विचित कैसे होगा। तो पहले तो जो भिन्नता के धारण है शरीर की हमारी भिन्नता है एकता नहीं। एक बात दूसरी बात यह है कि जैसे हम मकान में रहते हैं तो मकान से हम अलग हो जाते हैं और मकान के साथ भी तो चले भी जाते हैं बाहर भी चले जाते हैं, इससे ये सिद्ध हुआ कि मकान हम नहीं है, हम मकान नहीं है, ना तो मकान मैं हूँ और ना मैं मकान हूँ, अर्थात मकान से मैं अलग हूँ। तभी तो मकान से हम अलग हो जाते हैं। इसी तरह से ही शरीर से अलग मेरा स्वरूप न होता तो मृत्यु समय में शरीर से अलग कैसे होता, और मृत्यु समय में शरीर से अलग हो जाता है तो शरीर में मुझे कैसे हो सकता है। ये अगर ऐसी बात हो तो मृत्यु समय कैसे शरीर से अलग हो जाता है, तो पहले से अलग है मकान में बैठा हुआ वो मकान से अलग है तभी तो अलग होता है। तो ये बड़ी अनुभव सहित युक्ति विचित्र तीसरी बात। तीसरी बात शरीर है वो बढ़ता है, बचपन से देखें तो आज दिन तक हमारे देखते देखते शरीर बदल गया, परंतु मैं बदल गया ये किसी का अनुभव नहीं है। बाल्यावस्था का अभाव हो गया परंतु मेरा अभाव हो गया ऐसा कोई नहीं मान सकता। किसी को पूछा जाए तो तेरा अभाव हो गया तू वो नहीं है बालक बने मर गई हूँ, तो अपना अलग रहना और शरीर का बदलना अपना न बदलना ये अपने अनुभव सिद्ध बात है, एकदम ठीक बात है। जो जितने अनर्थ होते हैं ये देहाभिमानी को ही होते हैं, जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि है वासना है तृष्णा है आशा है ईर्ष्या है, ये सबकी सब चीजें सब शरीर के साथ एकता मानने से होती है। अगर शरीर से अलग ठीक ठीक अनुभव हो जाए तो ये दोष कोई सही नहीं रहेगा, न काम रहेगा क्रोध रहेगा
वो उसमें मद मात्र कोई दोष नहीं रहेगा, राग द्वेष आदि अत्यंत भाव हो जाएगा रहेगा ही। जो ग्रंथों में आता है कि ये सूक्ष्म हो जाते हैं, मिटते नहीं, परंतु ये बात है कि इसे अलग अलग अनुभव हो जाए तो बिल्कुल ही मिटते अगन, बिल्कुल बिल्कुल अगन मिल जाएगी, क्योंकि स्वयं में वासना नहीं है, सही में वासना नहीं है। स्वयं जो तत्व है उसको शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त माना है तो उसमें वासना नहीं है, और सही में वासना है चाहिए, लकड़ी में वासना होनी चाहिए, काठ में वासना होनी चाहिए, किलोमीटर में वासना होती नहीं, और केवल से वासना होती नहीं। ये वासना केवल तादात्म्य में है, ये तादात्म्य की मान्यता में है, और मान्यता में होने पर भी है जड़ अंश में, परंतु चेतन के संसर्ग से, चेतन का संसर्ग नहीं हो तो जड़ में केवल में नहीं हो सकते, और केवल चेतन में नहीं हो सकते। इस वास्ते भगवान ने केवल को दो बार दिया गीता में, और इसी वजह से दिया आये न मनसा बुद्धिया केवल इदम की ओर थी, योगिना कर्म कुरुवंती संगम त्यक्त्वा तु शुद्धे। कर्मयोग के लिए तो काये न मनसा बुद्धिया और केवल इंद्रिय, तो केवल इन काये न, केवल इन मनसा और केवल या बुद्धिया और केवल इंद्रिय, ये केवल संसार लग जाएगा। तो ये केवल कहने का तात्पर्य क्या है कि ये मेरा नहीं, मेरे साथ संबंध का नहीं है, तो कर्मयोग इनके द्वारा कर्म करता है, केवल इनको शुद्ध रख करके, इनके साथ अपना ममता नहीं रखता, इनके साथ अपना पन रखो तो कर्म के फल का हेतु बढ़िया हो। इस वास्ते कर्मयोग के लिए भी ये केवल रह गए, और ज्ञान योगी के लिए 18वां अध्याय में आया है कि
Thank you. संप्रदे अवचनों का वचन है।